आए सो अमृत गुर पाए जियो।
जिस जल निध कारण तुम जग में आए, इस जगत का आधार की है, किस कारण असि इस जगत दे विच आए हां। सब तो पहला एक रूहानी भेद है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। पवन नु गुरु किया गया है और पिता की संज्ञा दिती गई है पानी। इना दे योग दे नाल ही, इना दे मिलन नाल ही जदों ए पिता पानी मां धरती दे विच प्रवेश करता है, उसी वक्त ए सारी रचना जड़ी है मन बुद्धि और इंद्रिया दी ए दृष्टि गोचर हुंदी है। ए इशारा है उना तत्वां दी तरफ जिन्हां दे अंदर ओ परमात्मा दी ताकत कम कर रही है, जिन्हां दे संयोग दे नाल अनंत ब्रह्मंडा दी उत्पत्ति है। उन्हां नूं आधार दिता गया है, उन्हां नूं चलाया जा रहा है, उन्हां नूं खत्म किया जाता है और उस तो बाद फिर ये रचना जो है दृष्टिगोचर होंदी है। तो गुरु नानक साहब ने अपनी इस तुक दे विच बिल्कुल स्पष्ट कर दिता है, गुरु जो है गुरु की संज्ञा इस हवा नूं दिती गई है। अगर ये हवा इस शरीर दे विचों निकल जाए जिसनूं असीं प्राण शक्ति कहिंदे हां, तो यह शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहिंदा। कितना भी असीं इस शरीर दे नाल प्यार कर लईए, कितनी भी ममता कर लईए, कितना भी इसनूं सजा लईए, कितना भी इसका रख रखाव कर लईए, सिर्फ एक हवा का बुलबुला है मामूली जा फूक निकल गई तो यह किसी काम का नहीं। और जब तक यह फूक है इस चमड़ी दे विच हवा भरी हुई है, गुरु नानक साहब कहंदे ने तू आफरी फिरदा है चारों पासे पूरे ब्रह्मांड दे विच, किसी नूं नहीं जानदा, किसी दी कीमत नहीं समझदा, सिर्फ अपने आप नूं मेरी मैं नूं ही करके इस जगत दे विच विचरण कर रहा है। सो गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि यह हवा जो गुरु है, अगर गुरु प्रसन्न ना हो ते इस सृष्टि दे विच जीव दा किसी भी जगह पार उतारा नहीं हो सकता, किसी भी जगह उसनू ए मुंह छुपाण दी ए जगह जो है नहीं मिल सकती। परमात्मा रुठ जावे ते कोई गल नहीं, गुरु दा घर मौजूद है, पर्दा मिल जाएगा। अगर गुरु रुठ गया ते विचार करके देखो किसने पर्दा देना है, किथे जा करके असी मुंह छुपावांगे। उसे तरीके दे नाल इस देह दे विच इस पवन नू गुरु किया गया है। इस सृष्टि दे विच जदों भी जीवात्मा किसी भी जगह जाकर के पैदा हुंदी है, जन्म लैंदी है, किसी भी जून दे विच जैसी भी इच्छा और कामना उसने मनुष्य जन्म दे विच आकर के कीती हुंदी है और इस नूं मुख रख करके जदों भी वह कोई कार्यविधि अपनांदी है तो यह हवा ही है, हवा ही गुरु दी रूप दे विच उस जीवात्मा नूं उस बीज नूं उस जगह लै जांदी है जिस जगह उसके किरत बद्धी हुई है। जहां दाने तहां खाने बिल्कुल स्पष्ट उपदेश है कि जिथे भी दाना तेरा लिखा होया उथे ही जाकर के तू उसका भुगतान करना है, भुगतान लेना भी है और भुगतान देना भी है। और इस सब दा आधार यानी कि यह प्राण शक्ति परमात्मा दी जिसनू पवन किया गया और इस शरीर दे विच पवन अगर जरा कुछ रुठ जाए, ये गुरु जरा भी नाराज हो जाए तो उन्हां जीवात्मा नू पुछ करके देखो जेड़े कहंदे ने सानू गैस की बीमारी है, इस गैस की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ इको ही है कि असि इस पुतले का आधार जो सीगा उसकी कदर नहीं कीती। वो आधार की सीगा, वो शब्द सी, वो नाम सी, कीर्तन सी, अकत कथा सी, बहुत सारे लफ्जा दे नाल गुरुआ ने संता ने इस भेद नू प्रगट कीता। जदो असि इस कोलो रुठ जांदे आ उसी वकत ए गुरु जो है हवा जिसनू कहा गया है ए रुठ जांदा और इस जीवात्मा दी कैसी भयानक पीड़ा उसनू बर्दाश्त करनी पैंदी है, तड़फ तड़फ कर उसनू जान ही दे देनी पैंदी है पर उसका कोई भी इलाज नहीं हुंदा। इसी करके गुरु नानक साहब ने इसनू गुरु दी संज्ञा दिती है और पहली तुक दे विच स्पष्ट करदे ने कि जिस जल दे निध कारण तुम जग में आए सो अमृत, उसनू अमृत कहंदे ने। हुण इत्थे भेद है कि ये अमृत केड़ा है और किस जल नू लैण वास्ते पीण वास्ते तेरी पैदावश हुई है इस दो पैर की जून दे विच आया है। गुर पै ही जियो गुरु दे कोल ओ समर्था है ओ ताकत है उस अमृत नू देण दी। अगर तू अमृत नू पीना चाहता जिस जल नू पीण वास्ते तू इस जगत दे विच आया है ओ गुरु दे कोल है। गुरु दे कोल जाएगा ते तैनू ओ दात अवश्य मिलेगी। इस जगत दे विच थोड़ा जा असी विचार करके देखिए कि एक भ्रम चल रहा है एक विशेष तरीके दे वेश नू धारण करन वाले जेड़े कहंदे ने कि अमृत पी लो और गुरु वाले बन जाओ। असली गल की है अमृत बाणी दे विच ए गुरु नानक साहब दी बाणी है जड़ा शब्द है ए गुरु नानक साहब दा उस समय उचारिया गया। उस समय ओ अमृत किस नू कहंदे सन और किस चीज दे नाल इस दी प्राप्ति हो सकती है और किस जगह ए मिलदा है बाकी दे शब्द दे विच गुरु नानक साहब ने ए सारा भेद स्पष्ट कीता है। पर थोड़ा जा भ्रम इत्थे है इस भ्रम चो असी निकल जाइए। गुरु कलगीधर पातशाह ने गुरु नानक साहब दा ही रूप सन पूरन सतगुरु सन सत पुरुख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ। अपनी बाणी दे विच बिल्कुल स्पष्ट कीता है कि गुरु किसनु किया है जिसने सत पुरुष यानी के इस मंडला दी रचना करन वाला ओ ताकत ओ आधार देन वाला जिसनु नाम या शब्द कहंदे आ दयाल पुरुष भी कहंदे आ उसनु सत पुरुष किया गया जिसने उसनु जान लिया जड़ा उथे तक पहुंच गया जिसने उस दे मुख नु उस दी ताकत नु हासिल कर लिया उसनु गुरु किया उसनु सतगुरु किया जांदा है। क्यों? क्योंकि उसी अकाल पुरख दी ताकत नु लै करके इस जगत दे विच देण वास्ते आंदा उना जीवात्मा नु जड़ियां तड़फ रहियां ने इस पाप सागर चो निकलण वास्ते जिन्हां नु माया दे नाल प्यार है जगत दियां वस्तुआं संबंधा दे नाल प्यार है उना नु कायम रखण वास्ते उना नु प्राप्त करण वास्ते अपनी हस्ती मिटा रहे ने उना वास्ते ए जल दी निधि ए अमृत दी लोड़ नहीं है ना ही उना नु ए अमृत दिता जांदा। फिर जड़ा अमृत असी पी रहे हां विचार करके देखिए अख बंद करके लैन च लग जाओ अमृत दे बाटे तैयार हो रहे ने जा करके पी लो भाई कोई मनाही नहीं है कोई मर्यादा नहीं है कोई नियम नहीं है यानी के इस अमृत नू जड़ा बाणी दे नाल तैयार कीता जांदा इस नू ते कोई भी पी सकदा है। पर गुरु नानक साहब जिस अमृत दी गल कर रहे ने ओ बिल्कुल स्पष्ट है कि ओ सिर्फ पूरन सतगुरु दे कोल है और उसी नू दिता जांदा है जड़ी उस दी मर्यादा दे विच आ जांदे ने। गुरु कलगीधर पातशाह दे मुतलक जड़ा भ्रम चल रहा है पूरन सतगुरु दे रूप दे विच इस जगत दे विच आए सन पूरन सतगुरु जदों भी इस जगत दे विच आंदे ने ते अपनियां रूहां नू उद्धारण वास्ते तारण वास्ते कोई ना कोई निशान अवश्य देंदे ने। गुरु नानक साहब ने चरण दा अमृत दिता पिछले युगां दे विच नजर मार करके देखिए ते कितने ही ऋषि मुनि होए ने जिन्हां ने अलग अलग विधियां अपनाईयां यानी के उस वक्त समय काल दी जो लोड़ सी जो मर्यादा सी जो उन्हां नू सचखंड तो हुक्म मिलिया उन्हां ने कोई ना कोई निशान अवश्य दिता। ओ निशान किस वास्ते सीगा जुड़न वास्ते सीगा कि असी उस निशान दे नाल जुड़िए सतगुरु दे कोल आईए उना दे उपदेश नू सुनिए उना दे उपदेश नू सुनन दे नाल की सी कि असी सत दी संगत करिए गुरु दी संगत करिए संत दी संगत संत दे संगत नू असी समझ नहीं सके कि सतसंग किस नू किया जांदा संत दी साधु दी संगत किस नू कही जांदी है। शरीर रूप दे वी ते असी हजारा अनंत काल तो अनंत युगा तो पूरन सतगुरां दी संगत करदे आ रहे हां पर शरीर रूप दे वी संगत करन दे नाल कदे जीव दा उद्धार नहीं हो जांदा। एक घड़ी आदि सी भी आद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध करोड़ा ही अपराध जड़े ने कट जांदे ने नष्ट हो जांदे ने ते विचार करके देख लेना चाहिदा कि सानू कितने ही साल हो गए पूरन सतगुरां दे कोल जांदे आ शरीर रूप दे विच सारा सारा दिन उन्हां दे कोल बैठे रहंदे आ पर विचार करके देख लो अगर ये करोड़ा ही अपराध अद्धी तो अद्धी घड़ी दे विच कट जांदे ने ते घंटे और कितने ही सालां दी साधना दे बाद शरीर रूप दे विच उन्हां दे कोल रहण दे बाद हुण तक ते साडा लेखा साफ अवश्य हो जाना चाहिदा सीगा। अनंत काल तो असी इस किरिया नू अपना रख्या पर असी संत दी संगत नू नहीं समझ सके। तुलसीदास जी ने अपनी बाणी दे विच बिल्कुल स्पष्ट कीता है गीता दे विच भगवान श्री कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट कीता है 13वें श्लोक दे विच बिल्कुल 13वें अध्याय दे 24वें 25वें श्लोक दे विच बिल्कुल स्पष्ट करदे ने कि संगत केड़ी है संगत किस नू कहंदे ने जदों असी संत दे कोल आंदे आ सतपुरुष दे कोल आंदे आ सतपुरुष ही उस नू कह दिता जांदा है। क्यों कहा जांदा है क्योंकि ओ ताकत जो है जिस आत्मा दे नाल लग गई जिस कट दे विच प्रगट हो गई उस परमात्मा दा ही रूप हो गया समुद बिरोल देख एक शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गुरु ही वो परमात्मा है, परमात्मा ही वो गुरु है। ए कदों पता चलदा, जदो असी इस समुद्र रूपी शरीर नु विरोलदे हां, यानी के जदो जीवात्मा जो है नौ द्वारा चो निकल करके दसवें द्वार पहुंचदी है, ए समुद्र शरीर दा जड़ा है विरोल करना है, यानी के मथना है, ए मथ के ताई उस नु पता चलदा है कि गुरु किस नु कहा गया है। गुरु समर्थ है, गुरु दे विच समर्था है, ए अमृत देण दी, ए दात देण दी, और किसी दे विच ए ताकत नहीं है कि इस दात नु दे सके। सो कलगीधर पातशाह ने जड़ी दात दित्ती सी, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਜਲ ਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲੂਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾ, ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲਏ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਖ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੈਸਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਸ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤਦਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਲਟਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਪਿਛਲੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖੂਹ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਨਿਵਲਾਈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਿਸ ਤਾਂ ਨਖਾਲਿਸ ਜਾਣੇ। ਖਾਲਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਖੜੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਆ ਉਹ ਸੰਦੇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖ ਮਿਟ ਗਈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚਾਰ ਸਹੀ, ਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਿੰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੋ, ਅਗਰ ਦੋ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने गुरु के उपदेश नु स्पष्ट करना चाहिया, उजागर करना चाहिया, यानी कि अमृत सरोवर की गल की जा रही है, जिहड़ा अमृतसर दे विच मौजूद है, उस नु प्रगट करन दा हुक्म दिता गया सीगा। उस नु जदों उन्होंने प्रगट किया तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि एक तालाब बना करके उस दे विच कमल बनाया जाए, ठीक वैसी ही रचना रची जाए जैसी कि उस पार ब्रह्म दे विच मौजूद है। तो उन्होंने जिस नु रचना करन वास्ते दस्या सीगा उस नु अंतर दे विच ओ चीज दिखा भी दित्ती, पर उस दे बाद भी ओ कमल नहीं बनाया जा सकया। तो अखीर हार करके उत्थे मंदिर की स्थापना कर दित्ती गई। तो ओ जड़ी नकल है उस असल दी नकल है जड़ी पार ब्रह्म दे विच मौजूद है। असी सारे भ्रम दे विच रहंदे आ, सतगुरु सारे ही हुक्म करदे आ होए बिल्कुल भेद नु स्पष्ट करदे ने, पर तासी उस भेद नु जान करके कदी उस दे उत्ते अमली जामा नहीं पहनांदे। अगर तुसी अमर होना चाहंदे हो, इस आवागमन तो निकलना चाहंदे हो, तो उस अमर सरोवर दे विच यानी कि जड़ा पार ब्रह्म दे विच आ उस दा स्नान करना बहुत जरूरी है। कागो हंस करे दी जड़ी बाणी है ओ उसी जगह ते उचारी गई सी ओ देख करके। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा जड़ी है इस वक्त काग दे रूप दे विच आ। काग दे विच क्यों है? क्योंकि ये मन दी संगत करके सिर्फ इस गंध नु खाना पसंद कर दी है। गंध कूड़ केड़ा है? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। इस संसार नु कूड़ क्या है? ये वस्तु और संबंधा नु कूड़ किया गया। ये जीवात्मा मन की संगत दे विच ये सारे कूड़ दे विच लिबड़ी हुई है, इस करके इस नु काग क्या है। काग जदो अंतर दे विच जांदा है यानी कि पर ब्रह्म दे विच जदो ये काग ये जीवात्मा स्नान करती है उस वक्त वह हंस हो जाती है। हंस किवें बनती है? इस दे उपर जिहड़े तीन पर्दे ने, एक पर्दा तो इत्थे ही छोड़ जाती है यानी कि स्थूल शरीर का, इस दे अंदर सूक्ष्म और कारण पर्दे दो होर मौजूद ने, 24 प्रकृतियां इहदे उपर ने, ईर्षा द्वेषता की मैल है, 5 अवगुण ने, 3 गुण ने, रजो सतो और तमो। ए सारी मैल जड़ी है उस सरोवर दा स्नान करन दे नाल उतर जांदी है। ओ सच्चा सरोवर पर ब्रह्म दे विच मौजूद है, पर उहदा रस्ता कित्थे है? इस शरीर दे विचो, इंसान दी जून दे विचो। ए दसवां द्वार जिहड़ा असीं कहिंदे आ, इस शरीर रूपी कबर चो आत्मा निकल जांदी है और गुरु दे नाल लग करके गुरु ही सारे रस्ते नूं पार करवांदा। ए सारा रस्ता कोई अंतर दे विच एक कदम भी नहीं चल सकदा। ए सारी देन, ए सारी समर्था पूरन सतगुरु दे कोल है, और जिन्हां दा सतगुरु नहीं है तो विचार कर सकदे ने कि कदों असीं उस अमृत सरोवर दे कोल पहुंचांगे, कदों स्नान करके असीं हंस बणांगे। उस वक्त ए आत्मा जड़ी है बिल्कुल नंगी हो जांदी है। नंगी दा भाव है कि इस दीआं सारीआं मैलां, रंग रूप रेख अखार सब खत्म हो जांदा, लिंग भेद भी खत्म हो जांदा। ना स्त्री लिंग रहिंदी है, ना पुल्लिंग रहिंदी है, पूरा 12 सूरजा दी रोशनी जड़ी है इस दे अंदरों प्रगट हो जांदी है। उस वक्त ए तड़फदी है, उस वक्त तेनूं पता चलदा कि मैं किस दा अंश सी और मैं किथे लिबड़ी बैठी सां। जिस तरह बरसात दी बूंद है किचड़ दे विच गिड़ जांदी है ते किचड़ दा ही रूप हो जांदी है, पर अगर असीं उस किचड़ नूं गर्म करिए ते उस दे विचों पानी जिहड़ा है निर्मल हो करके भाप बन करके निकल जांदा है, उह किचड़ जिहड़ा है थल्ले रह जांदा है। उसे तरीके दे नाल ए आत्मा जड़ी है उस स्नान करके उस सरोवर दा सदा लई निर्मल हो जांदी है और अपने मूल दे विच समान दे काबिल बन जांदी है। ते गुरु नानक साहब बिल्कुल स्पष्ट करदे ने कि उस अमृत नूं पीण वास्ते, उस अमृत दा स्नान करन वास्ते तैनूं 2 पैर दी जून दित्ती गई है। अगर देवी देवतियां दे विच समर्था हुंदी, सूक्ष्म कारण लोकां दीआं उत्तम भोगी जूनां दे विच समर्था हुंदी, ते इस 2 पैर दी जून जिस नूं इंसान दी जून कहा जांदा उस नूं इतना मान ना दित्ता जांदा, इतनी वडियाई ना दित्ती जांदी। इस देई को सिमरे देव सो देई बज हर की सेव, बज गोबिंद भूल मत जाओ मानुख जन्म का यही लाभ। मनुख जन्म दा अगर तुसी लाभ चुकना चाहते हो, 2 पैर दी जून नु सार्थक करना चाहते हो, ते कहंदे ने भजन कर किस दा? उस परमात्मा दा। इस देह दे विच रह करके ही उस अकाल पुरख दा भजन कीता जा सकदा, उस अकाल पुरख नु प्राप्त करन दे काबिल बनिया जा सकदा। इस देह नु सिमरे देव, देवी देवता भी जदो उस परमात्मा नु सिमरन करदे ने, याद करदे ने, ते इक मंग मंगदे ने। की मंग मंगदे ने? जदो ओ अकाल पुरख दी ताकत सतगुरु दे रूप दे विच सत्संग दे विच आकर के बैठदे ने, प्रगट हुंदे ने, उस वक्त ते देवी देवते भी आकर के अपनी सलाम प्रगट करदे ने, अपनी फरियाद रखदे ने सतगुरु दे अगे कि सानू भी ए मनुखा जन्म दे, ए 2 पैर दी जून दे कि असी तेरे विच मिलन दे काबिल बन सकीए। इस तो स्पष्ट हो जांदा कि जितने भी देवी देवता उत्तम भोगी जूना ने मनुख जन्म दे विच कीते गए दान पुन, यानी कि जितनिया भी अच्छे कर्म किए गए ने, वो सारे का सिर्फ भुगतान मात्र है और आत्मा लई पाप के बराबर है। पाप क्यों है? क्योंकि आत्मा जो है उन्हें मंडलों तो उत्ते नहीं जा सकती। हर मंडल का अपना नियम है। जिस तरीके दे नाल पृथ्वी से असी बैठे हाँ, पृथ्वी लोग का मौत लोग का एक नियम है कि असी इस देह दे विचो निकल नहीं सकते। सिर्फ गुरु की ताकत ही इस जीवात्मा नू देह दे विचो कढ़ सकती है। और कोई भी ऐसी विधि नहीं जिहड़ी कि असी अहंकार लै करके बैठे हाँ कि असी इस तरीके दे नाल विधि नू अपनावांगे तो साडी सुरत सिमट जाएगी। अज तक किसी लफज दे विच ताकत नहीं, किसी जल दे विच ताकत नहीं इस सुरत नू समेट सके। सुरत नू समेट करन दी ताकत जिहड़ी है पूर्ण सतगुरां दे अधीन है, हुक्म दे अधीन है। ओही हुक्म काल दे अंदर काम करदा, ओह काल दे हुक्म दे नाल ही इह सुरत जिहड़ी है अखीर दे विच कढ़ी जांदी है। और अगर सतगुरु चाहणगे तो ओही इस सुरत नू समेटणगे, इस शरीर रूपी कबर दे विचों बाहर कढ़णगे। और किसी दे विच ना इह समर्था है और इह किसी भ्रम दे विच रहना होई नहीं चाहीदा। और जद तक इह जीवात्मा जिस अमृत नू पीण वास्ते जगत दे विच आई है उस नू प्राप्त नहीं कर लैंदी, यानी कि पर ब्रह्म दा ओ अमृत कुंड दा स्नान नहीं कर लैंदी, पी नहीं लैंदी, इह परमात्मा नू मिलण दे काबिल नहीं हो सकदी। और जद तक इह परमात्मा नू मिल नहीं लैंदी इस दी आवागमन खत्म नहीं होएगी। तो आपां सारे ही जड़े हां आवागमन दे विच फसे बैठे हां। बड़े बड़े भ्रम पैदा कीते गए ने, बड़े बड़े मत और धर्म चल रहे ने, बड़िया बड़िया किरिया दित्तियां जांदियां ने, बड़िया बड़िया विधियां दसियां जांदियां ने। साध संगत जी इन्हां सारिआं दे विच किसे दे विच भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुहाडे सब दे अंदर है, हर कट कट दे विच ओह मौजूद है, पर मिलदा सिर्फ अंतर दे विच दो पैर दी जून, यानी कि इंसानी जन्म दे विच ही मिलदा। पर कदों मिलदा? जदों माया नूं असीं त्यागदे आ। यह माया भी उस अकाल पुरख की देन है, वह एक खेड रची हुई है। इस खेड दे विच माया इसी करके दिती गई है कि तुसी परमात्मा नूं मिलना चाहते हो या इस जगत दे विच फसना चाहते हो। यानी कि वस्तु और संबंधा की अगर आसक्ति है तो परमात्मा जितने महान विधियां नूं मर्जी अपना ले, जितने मर्जी महान सतगुरां दे चक्कर कट ले, उस नूं कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो सत की जड़ी संगत है, संत की संगत है, बाणी दे विच बिल्कुल स्पष्ट उजागर हो जाती है। यह सारे वर्णन दे नाल कि किस तरीके दे नाल संत दी संगत हो सकती है कि जदो जीवात्मा इस उपदेश नू सुन करके अमली जामा पहनांदी है, अपने आदर्श जीवन नू प्रगट करदी है, अपने करैक्टर नू उजागर करदी है, जिस करैक्टर नू लै करके सतगुरु इस जगत दे विच अवतार लैंदे ने, तां ही जा करके इह संत दी संगत जिहड़ी आ जीव दे कोट कोट यानी कि अनंत अपराध, कोट तां सीमित हो गया, अनंत अपराध जिहड़े अनंत काल तों इस जीवात्मा ने मनुखे जन्म विच आ करके कीते सी ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋੜ ਵੇਸ ਪੇਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਵਿਧਾ
ਛੋੜ ਵੇਸ ਪੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਡਾ ਵੇਸ, ਵੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਸਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਔਰ ਉੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਸ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮਿਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, पूर्ण इंसान का पाप कि जितने भी इस जगत दे विच इस जून दे विच आ चुके ने अगर वो अपना उद्धार करना चाहते ने तो उन्होंने उस अमृत कुंड दे विच जाना पेगा, स्नान करना पेगा, ए अमृत पीना पेगा। तब तक जब तक नहीं पीणगे ए मैल उतर नहीं सकती और परमात्मा नूं मिलन दे काबिल नहीं हो सकते। किसी भी देश विच होवे, किसी भी जात विच होवे, किसी भी धर्म नूं अपना रखा है, इस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जीवात्मा ने अंदर जाना है, चाहे हिंदू होकर के जाओ, चाहे मुसलमान होकर के जाओ, चाहे अंग्रेज होकर के जाओ, चाहे सरदार होकर के जाओ, अंदर कोई जात पात नहीं है। जिथे लेखा जिथे दे जात ना जाए, जिथे लेखा मंगिए, जिथे लेखा हिसाब होना उथे दे दिया ए जाता जड़िया ने देश धर्म कौम कोई भी नहीं जाते। यानी कि सिर्फ आत्मा ने ही जाना है, ये सारे वेश जड़े ने ए बाहर दे शरीर ने धारण किए ने, शरीर ने तो अंदर जाना नहीं। शरीर तो पहले ही गुरु नानक साहब ने स्पष्ट किया कि कबर है, इस कबर दे विचो निकलो, कबर दे विचो आत्मा निकल जाएगी तो सारे वेश इत्थे ही रह जाएंगे। दूसरा लफज इस्तेमाल करते ने छोड़ा वेश भेख। भेख किसनू कहंदे ने कि जो कुछ असी है वा उसनू असी छुपा लैंदे आ, जो कुछ असी नहीं आ उसनू असी प्रगट करते आ, अंदरों असी एकदम काले आ, बाहर चिट्टे वस्त्र पा करके सज करके बैठ जाते हैं, दाड़ी रख लेंदे आ। भाई साडे वर्गा कोई गुरमुखी नहीं हैगा, साडे वर्गा गुरु दे हुक्म ते कुर्बान वाला होने वाला ही कोई नहीं है। मुंह टेढ़ा करके इतने निमाणे होकर के गुरु दे अगे फरियादा करदे आ, दीन हो जांदे आ कि जिस तरीके दे नाल गुरु नूं कुछ पता ही नहीं है। साध संगत जी घट घट के अंतर की जानत, भले पुरे की पीर पछाणत। वह परमात्मा अकाल पुरख गुरु दे रूप दे विच काम कर रहा, जिसने जड़ चेतन सब नूं आधार दे रख्या। उस जगह जिथे हवा भी नहीं है उथे भी रिजक दे रहा, जमण तो पहले ही रिजक दे दिंदा। क्या साडियां चलाकियां नूं इस भेख नूं नहीं समझ सकदा? यानी कि इस भेख नूं त्याग, छोड़ा वेस भेख चतुराई। चतुराई की गल कर दे, चतुराई का भाव है कि जड़ी जीवात्मा सतगुरु दे कोल पहुंच गई है, सतगुरां दे डेरियां ते जांदी है और उत्थे जा करके जड़ी ईर्षा निंदिया और चलाकी नूं अपनांदी है। किस तरीके दे नाल कि असी गुरु दे कोल जांदे आ, थोड़ा जा विचार करके देखिए तो एहोजीआं रूहां बिल्कुल स्पष्ट सानू नजर आ जाणगियां। कुछ संबंधा दे रूप विच होणगियां, कोई प्यारियां दे रूप दे विच होणगियां। ये बड़ी चतुराईयां इस्तेमाल करदियां ने एक दूजे का गला कटण वास्ते, निंदिया करण वास्ते, परमार्थी जीवना दे रस्ते रोड़े अटकाण वास्ते, और कई तरीके दे ऐसे ऐसे कर्म कर लैंदियां ने जिहड़ियां ये सोचदियां ने वी कि असी तो सतगुरु दे कोल आ। इत्थे आ करके बहुत सारियां जीवात्मा दा एक सवाल आ रहा, उह सवाल की है कि सतगुरु चुप क्यों रहिंदे ने? इस तो एक गुरु नानक साहब उदाहरण दे रहे ने, एक काठ का उदाहरण, काठ लकड़, लकड़ दे विच अग मौजूद है। कोई भी ऐसी लकड़ नहीं है जिस दे अंदर अग मौजूद नहीं है, और उस अग तो असी तपस दा काम कदों ला सकते हैं, उस दे उपर रोटी कदों पकेगी? जदों अग प्रगट हो जाएगी। अगर लकड़ रख दई है उहदे उत्ते तवा रख करके सारी उम्र रोटियां सेकदे रही है तो एक भी रोटी नहीं जे पकेगी, और अगर असी उस लकड़ दे विच अग प्रगट कर लई है तो साध संगत जी असी बोरियां दीआं बोरियां सारे अनाज दीआं रोटियां पका सकदे हां। उसे तरीके दे नाल जिस घट दे अंदर ए अग प्रगट हो गई, अग दा भाव है उदाहरण दे रूप दे विच गुरु नानक साहब ने दस्या कि अगर परमात्मा प्रगट हो गया तो साध संगत जी ओ प्रगट हुई वस्तु जड़ी है परमात्मा जी जड़ी है ओ पाप तो रोक देंदी है, ओ जीवात्मा नूं पाप नहीं करन देंदी, ओ गलत रस्ते ते नहीं चलन देंदी, ओ उसकी बुद्धि नूं निर्मल कर देंदी है। निर्मल कदों होंदी है बुद्धि? जदों आत्मा दे अधीन हो जाती है। इस वक्त ते मन दे अधीन आ, मन दे अधीन होण करके ये कुबद्ध है, और इस कुबद्ध के कारण ही वह जीवात्मा जड़ी है भरम दे विच रह करके गंदे तो गंदे नीच तो नीच कर्म करती है, और उसके बाद ही सतगुरु खामोश इसी करके रहते हैं क्योंकि वह परमात्मा का रूप है। परमात्मा साध संगत जी उदो ही काम करेगा, उदो ही सानू किचड़ चो कटेगा जो असी निकलना चाहवांगे, यानी कि जो रगड़ पैदा की जाएगी ताई चिंगारी उत्पन्न होगी और अग जो है प्रगट होकर के रोटी पकाने के काबिल बन सकेगी। अगर ये वस्तु अवस्था नहीं है तो जितनी मर्जी महान सेवा असी कर लीए असी सतगुरु को सोझ ही नहीं लै सकते, सतगुरु को परमात्मा का काम नहीं लै सकते। यानी कि एक खामोश मूर्ति का एक तस्वीर का काम लै लवेंगे, पर एक चेतन सत्ता एक मामूली मनुख का भी काम असी उस पूर्ण सतगुरु परमात्मा तो नहीं लै सकते। यही कारण है कि यह जीवात्मा जड़िया ने परमा दे विच आ करके कि सतगुरु तो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अस मैं इतनी नीच क्रिया की उसके बाद भी सतगुरां ने कुछ इफेक्ट नहीं आया, यानी कि कोई हुक्म नहीं किया, कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं दिती, कोई चाल नहीं लगाई, तो इसका मतलब है कि सतगुरु प्रसन्न ने। पर हे मूर्ख जीव, तू अपने जन्म और मरण ही पक्के किते ने, अपनी आवागमन दे विच ही फसना रहना पसंद किया, मोरी के कीड़िया नूं बाघ की हवा पसंद नहीं होंगी, बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे बिस्टा में पंजावनिया, गंदगी ये कीड़े नु तुसी बाहर कट के देख लो वह तड़फदा और फिर गंदगी दे विच ही जांदा। जेड़े मनमुखी जीव ने दो ही कौमां ने इस जगत दे विच, एक मनमुख ने एक गुरमुख ने, जिन्हें गुरु के हुक्म नु धारण कर लिया उसने गुरु की ताकत नु भी प्राप्त कर लिया। साध संगत जी वह जीवात्मा पल पल गुरु के हुक्म दे विच है, कल्पना दे विच भी किसी जीवात्मा नु तड़फा नहीं सकती, उसके रस्ते रोड़े टाने से दूर की गल है, गुस्से की क्या गल है, वह तो गुस्से तो कोसा ही दूर है। तो इस तो स्पष्ट हो जाता कि असी अगर पूरन सतगुरा को एक मामूली मनुख का भी काम ना लै सके तो उस अकाल पुरख परमात्मा के रूप के असी जानते हैं वह समर्था कदों हासिल हो जाएगी, और जब तक वह हासिल नहीं होगी यह जीवात्मा अंतर दे विच एक पौड़ी भी नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे पेखा की गुरु नु खबर है पर गुरु खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि असी उस पेख चो निकलना ही नहीं चाहते, इस चतराई चो निकलना ही चाहते। तो गुरु नानक साहब कहते ने कि छोड़ा वेस पेख चतुराई दुविधा। दुविधा किसनू कहते ने? जो जीवात्मा गुरु के हुक्म दे विच आना शुरू कर देंदी है तो उस वक्त एक पासे मन है एक पासे सतगुरु है, उसनू फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह मन का हुक्म है कि गुरु का हुक्म है। मैं जो कुछ कर रहा वा यह मन के हुक्म कर रहा या गुरु के हुक्म के उपर कुर्बान हो रहा, यह एक ऐसी दुविधा है। इस दुविधा चो सिर्फ सतगुरु ही कर सकते ने। तो गुरु नानक साहब स्पष्ट करते ने, चार लफज उन्होंने इस्तेमाल किए ने, बड़ा गहरा भाव है इन्होंने चार लफजा का। कहते ने जब तक तू ये चारों लफजा के पूरा नहीं उतरेगा, इन्हों नहीं त्यागेगा, ये अवगुण ने इस आत्मा ने यह गंदगी इकट्ठी की है मन के नाल लग करके, ये मन के विकार ने, और जब तक ये आत्मा मन की दासता तो मुक्त नहीं होगी अंतर के नहीं जा सकती। ई फल नाही जियो, ई फल केड़ा सीगा जड़ा पहली तुक दे विच स्पष्ट कीता सी कि जिस जल नू पीण वास्ते तू तैनु दो पैर दी जून ए मनुखा जन्म दिता गया, और वो जल की सीगा अमृत सीगा, ए अमृत पीण वास्ते तू आया है। साध संगत जी बिल्कुल भेद पहलियां दोहां तुकां जी गुरु नानक साहब ने स्पष्ट कर दिता है कि ए अमृत तैनू नहीं मिलेगा, बाकी जो कुछ तू मर्जी हासिल कर ला, और असी बाकी सब कुछ हासिल कर रहे हैं इस जगत दे विच, तुहानू सारयां नू किसे नू भी उस सच्चे नाम अमृत की दात अज तक किसे नू भी प्राप्त नहीं हुई।
मन रे तिर रहमत कत जाही,
मन नू उपदेश दिंदे ने कि मन नू तुसी स्थिर करो। तुक कहती है कि मन नू तुसी स्थिर कर लो, तो क्या कहण दे नाल मन स्थिर हो जाएगा? यह विचार करन दा मजबूर है, मजबूर है कि असी इस नू पढ़दे रहिए रटदे रहिए इस बाणी नू, तो क्या साडा मन स्थिर हो जाएगा? तो इस तरीके दे नाल नहीं हो सकता। यह उपदेश दिता है संता ने कि तुसी मन नू स्थिर करो, मन दियां असंघ वृत्तियां ने, इन्हां दा झुकाव संसार की तरफ है, यानी कि यह जड़ वस्तु और संबंधा की तरफ झुकाव करता है। इन्हों के बांध बनाना यह जीवात्मा का काम है, और बांध बनाने वास्ते उस नू अभ्यास करना पैंदा है। अभ्यास केड़ा? जो भी सत सतगुरु इस जगत के आते ने जो भी हुक्म करते ने वही अभ्यास है, यानी कि उसके हुक्म के उपर कुर्बान हो जाना, इस तो वड्डा कोई भजन नहीं, इस तो वड्डा कोई अभ्यास नहीं। एको ही गल गुरु नानक साहब करते ने कि अगर उन्होंने कहा बेटा तुसी सच्चे होना है तो अंदरों बाहर सच्चे होना, सच के उपर कुर्बान हो जाना। जड़ी जीवात्मा सिर्फ सच के नाल लड़ रही है, सच नू प्राप्त करना चाहती है, उस झूठ नू छड़ना चाहती है, इस तो वड्डा भजन कोई होर हो ही नहीं सकता, इस तो वड्डा कोई अभ्यास है ही नहीं है। और इसी अभ्यास नू करन वास्ते तेरे घट यानी के शरीर दे अंदर है। तो गुरु नानक साहब पहले स्पष्ट कर चुके ने कि किस तरीके दे नाल आत्मा इस घट दे विच जांदी है, यानी के दसवें द्वार चो निकल के पार ब्रह्म दे विच उस अमृत नू पींदी है। तो यह प्रण है कि यह जीवात्मा बाहर तलाश कर रही है, ये बाहर ना अमृत अज तक है वे ना किसी नू मिलिया। पूरन सतगुरां ने तो सिर्फ निशान दिते सन, पर असी उन्हां निशानां नू अमृत या नाम किया, ते क्योंकि सतगुरां ने दिते सन ए मान दिता गया, पर असी इन्हां दे लफ्ज़ां दे अर्थ ना समझ सके, और असी झूठे अर्थां दे विच फस गए, और झूठे अर्थां दे विच फस के अपने आप नू इस जीवात्मा नू सदा लई बंधन दे विच धकेल दिता, आवागमन नू पक्का कीता, इस नू इस तो मुक्त कराण दे काबिल हो ही ना सके। तो गुरु नानक साहब कहंदे ने कि सब कुछ तेरे घर दे विच ही है, बाहर जाएगा तो तैनू दुख चुकना पेगा, अगर सुख चाहता है तो अंतर दे विच इसकी तलाश कर, समुद्र शरीर विरोल देखिए, अविरोल करके तो देख, नो द्वारा चो निकल करके तो देख कि दसवें द्वार ए अमृत मौजूद है कि नहीं। दिन रात ओ परमात्मा दी धुन ओ आवाज तुरकारे दे रही है, उस दे विचों प्रकाश आ रहा, तड़फ तड़फ करके ए जीवात्मा जड़ी है उस दे नाल मिलना चाहती है, पर मन जड़ा है उसनु मिलन नहीं दिंदा। यानी के मन का झुकाव कित्थे है, उसकी वृत्ति संसार की तरफ है। जब तक अस संसार की तरफों इस माया नु त्यागांगे नहीं, इस ममता नु त्यागांगे नहीं, तब तक ए आत्मा इसे तरीके नाल तड़फ रहेगी जिस तरीके नाल अनंत काल तो एक कैदी बनी हुई है।
अवगुण छोड़ गुणा को तावे, कर अवगुण पछताही जियो।
अवगुण छोड़ गुणा को तावा, बिल्कुल स्पष्ट कर देने कि अवगुणा नु त्याग और गुण नु प्राप्त कर। अवगुण की है और गुण की है, इस जगत दी तरफ मन दी आसक्ति और आत्मा दा प्यार जड़ा है इस जगत दे नाल। अपने आप नु शरीर समझ करके बैठी है और शरीर दे विच जो मन है इस जीवात्मा नु बाहर इस वस्तु और संबंधा दे नाल जोड़ देंदा। तो यही अवगुण है, यही संसार दी आसक्ति एक ऐसा वड्डा अवगुण है। बाकी जितने भी अवगुण ने ये सारे इस आसक्ति रूपी अवगुण दे अंतर आ जाते हैं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं अवगुणा नु छड, यानी कि संसार दी आसक्ति नु त्याग, गुण नु ता गुण नु धारण कर। हुण गुण केड़ा है, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। गोबिंद गुण नाम, गोबिंद की है ओ उसका एक गुण है जिसनु असि नाम कहंदे आ। नाम धुन बाणी, नाम की है उस दे अंदर एक धुन है, एक आवाज है, कहंदे ने बाणी है, निरंतर बाणी निरंतर आवाज आ रही है, इस दसवें द्वार दे विच मिलती है। ते जब तक असि इस संसार रूपी अवगुण नु नहीं त्यागांगे तद तक इस परमात्मा दे गुण नाम नु धारण करन दे काबिल बाणी नहीं सकते। और जब तक जीवात्मा अवगुणा नु धारण करके बैठेगी कहंदे ने अंत दे विच तैनू पछताना पेगा। आखिर काल दे विच किसने आना है, जिसने खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोया आई। खेत जड़ा है एक शरीर है, यानी के मनुखा जन्म मिलिया है, ए संदला खेत मिलिया। अगर नाम बोता सतगुरु बोता ते अंत खलोया आई। अंत साध संगत जी, सतगुरु जरूर आणगे, क्यों नहीं आणगे। सारी उम्र असी सतगुरु दे उपदेश दे उपर चलदे रहे, अपनी अस्थि नु मिटांदे रहे, ते क्या सतगुरु भुले बैठे ने। वो आए इसी वास्ते ने, उन्हां आत्मा नु लैण वास्ते आए ने जिहड़ियां इस संसार दी आसक्ति नु त्याग रहियां ने। ते अगर जिंदे जी असी मोह माया चो निकल ना सके, संसार दी आसक्ति कीती, तियां पुत्रां दी ममता ना त्याग सके, वस्तुआं संबंधा दी ममता ना त्याग सके, ते साध संगत जी इस भरम चो निकल जाना कि अंत काल दे विच सतगुरु आ करके छुड़ा देणगे। ना कोई नाम आएगा, यानी कि ना वो प्रकाश दे दर्शन होणगे, ना आवाज सुनाई देगी, ना वो परमात्मा दा रूप सतगुरु दा दर्शन हो सकदा। किस दे दर्शन होणगे, जिन्हां दे जीते जी असीं देखदे हो कुर्बान हुंदे रहे, यानी कि पुत्तर दी ममता ते कुर्बान हुंदे रहे। ते साध संगत जी इही हो आ करके खलो जाणगे और ये जीवात्मा नूं दुबारा जन्म लेना पेगा इस जगत दे विच, इस धरती से दुबारा आना पेगा। क्यों? क्योंकि उसका भुगतान बाकी है, उसकी आसक्ति है, उसकी ममता है उस पुत्र दे विच, उस जीवात्मा नूं उसके पेट चो फिर जन्म लेना पेगा और जाकर के उसका भुगतान देना पेगा। तो यह तीन पुत्र जिन्होंने उत्ते असि कुर्बान हो रहे हैं, ये पिछले जन्म का हिसाब लैन वास्ते आए ने। और अगर साड़ी आसक्ति इन्हों के रहेगी तो सानू इन्हों का भुगतान देने वास्ते इन्हों के पेट चो जल फिर जन्म लेना पेगा। अज असी इन्हों की परवरिश की है, कल ये साड़ी परवरिश करेंगे। अनंत काल तो यह किरिया चली आ रही है, अज तक असि इस किरिया का हिस्सा बने हैं, इस चो निकलन के काबिल नहीं बन सकते। तो गुरु नानक साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अंत दे विच तैनू पछताना पेगा। कोई अगर यह समझे कि मरण के बाद परमात्मा मिलता है तो इस तो वड्डा कोई परम है ही नहीं। परम की है कि जिंदा जी परमात्मा नु प्राप्त नहीं किया, ते मरण दे बाद ते ओही कोई तैनू मिलना है जो कुछ तू जिंदा जी बीजदा रहा इस शरीर दे विच आ करके। मनुखे जन्म दे भी सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे भी कोई भी क्रिया अगर कर दिया तो उसका भुगतान इस जीवात्मा नु अवश्य देना पैंदा। कोई जादू मंत्र होने वाला नहीं। कोई अगर इस परम दे विच बैठा है कि कोई आ जाएगा सानू लै जाएगा ते एक परम है, असी हाथ ते हाथ तरे बिल्कुल मूर्ख बनी बैठे हैं। साडा जन्म उत्थों चला गया, कितने ही जन्म मनुख दे चले गए, एक जन्म होर चला गया, उस तो बाद साडा की बनना है। ये सब काल दा मजबून है, जो कुछ इच्छा और कामना कीती है उस दे विच साडा जन्म अवश्य होएगा।
सारे अपसर की सारी न जाने, फिर कीच बुढ़ाई।
सर अपसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाई जियो। बिल्कुल स्पष्ट कहने कि सार अपसर सार ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰੇਗਾ, ਅਪਸਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਸੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਹੀਨ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਪਸਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਖਸਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿੱਚੜ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿੱਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬੈ ਝੂਠੇ ਬਾਰ ਨਾਵੇ ਕਾਹੀ,
ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮੈਲ ਝੂਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈ ਤਿਸ ਵੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆੜਾ, ਜੇ ਜਲ ਮੰਜਲ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੈਂਢਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਈ ਨਾਰੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਕਤੀ। ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਤੀਰਥ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈ ਤਿਸ ਵੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਕਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਦਗੁਰਮੁਖ